ISKCON में भी निपाल आचार्य शिव प्रभुपाद की बसते भक्त वृंद की जय, बसते भक्त वृंद की जय, बसते भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरम चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयं दीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत सार में 11वें स्कंध के 13वें अध्याय पर श्री भगवान उवाच। सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेन चात्मनः सत्वेनान्यतमो हन्या सत्वं सत्वेन चैव हि। श्री भगवान उवाच। सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेन चात्मनः सत्वेनान्यतमो हन्या सत्वं सत्वेन चैव हि। श्री भगवान उवाच। सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेन चात्मनः सत्वेनान्यतमो हन्या सत्वं सत्वेन चैव हि।
हे भगवान वाच। सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मना सत्वेनान्यतमो हन्या सत्वं सत्वेन चैव हि।
श्री भगवान वाच। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, सत्वं सतो रजः रजो तमः तमो इति इस प्रकार गुणाः भौतिक प्रकृति के गुण बुद्धे भौतिक बुद्धि से संबंधित न नहीं च भी आत्मनः आत्मा को सत्वेना भौतिक सत्वगुण से अन्यतमो अन्य दो रजो तथा तमो हन्या नष्ट किए जा सकते हैं। सत्वम भौतिक सत्वगुण को सत्वेना शुद्ध सत्वगुण से च भी नष्ट किया जा सकता है। एव निश्चय ही निसंदेह। अनुवाद इस प्रकार से है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, भौतिक प्रकृति के तीन गुण जिनके नाम सत्व रजो तथा तमोगुण हैं, भौतिक बुद्धि से संबंधित होते हैं, आत्मा से नहीं। भौतिक सत्व गुण के विकास से मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण को जीत सकता है एवं दिव्य सत्व के अनुशीलन से वह अपने आप को भौतिक सत्व गुण से भी मुक्त कर सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ध्यानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु प्रणमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकत्रिप्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिकान्तो निदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता। परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्ते। मदेक बन्धो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमस्तु ते। असाधु साधु तदाई अदीनीचोचतः कर धानमुञ्च कदाचित् मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है हंस अवतार के द्वारा ब्रह्मा जी के पुत्रों के प्रश्नों का उत्तर। ये अध्याय पहले 7 श्लोकों में भगवान पिछले अध्याय में जो ज्ञान देना उन्होंने प्रारंभ किया था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान को कैसे प्रकट करना चाहिए, ये पहले 7 श्लोकों में भगवान बताते। फिर 8वें से लेकर 14वें श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं कि कैसे जो जगत है यहाँ जब तक भौतिक जीवन है तब तक प्रसन्नता आ नहीं सकती। अर्थात भौतिक जीवन ये निराशा दुख या अप्रसन्नता को लेकर आता है। तो इसका वर्णन करते हैं। और फिर आगे 15वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान हंस अवतार के प्राकट्य का भूमिका को बताते हैं, क्यों हंस अवतार आए। और फिर 22वें श्लोक से लेकर प्राय अंत तक इस अध्याय के 42वें श्लोक तक हंस अवतार के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं। और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण इन शिक्षाओं को समाप्त करते हैं। तो ऐसे ही पूरा अध्याय बटा हुआ है। अभी हमने श्लोक पढ़ा जहाँ भगवान कह रहे थे कैसे सत्व गुण है, तो सत्व गुण को कम से कम प्रयास करना चाहिए बढ़ाने का, और सत्व गुण से शुद्ध सत्व में जाने का प्रयास करना। तो सत्व गुण का प्रभाव क्या है? भगवान कहते हैं सत्व गुण का प्रभाव है कि रजो और तमो गुण वो अपने आप नाश हो जाते जब सत्व गुण को बढ़ाया जाता है। तो ये यहाँ भगवान कह रहे हैं। वैसे हम सबके अंदर तीनों गुण सदैव विद्यमान, ऐसा नहीं है कि इस कहा जाते व्यक्ति सत्व गुण में है मतलब उसके अंदर दूसरे कोई गुण नहीं। ये एक गुण की प्रधानता होती है तो उसको उसको कहा जाता है कि ये व्यक्ति सत्वगुणी है या ये रजोगुणी है। तो तीनों गुण होते हैं, इसीलिए हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हमें सत्वगुण का इस्तेमाल करना चाहिए तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण तक आने के लिए, और फिर सत्वगुण से शुद्ध सत्व में जाने। तो ये जो सत्वगुण है इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है जिनसे अन्य गुणों का प्रभाव कम हो जाता है। तो वर्णन आता है कि कैसे सत्व गुण को बढ़ाएं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कार्यों में कौन कौन सी चीजों में हमें सत्व गुण बढ़ाना चाहिए। तो भगवान 10 चीजें बताते हैं कि इनमें सत्व गुण को बढ़ाओ तब अपने आप आगे भक्ति की ओर बढ़ जाओ। तो पहली चीज भगवान बताते हैं शास्त्र। तीन गुणों में शास्त्र भी होते हैं, सत्वगुणी शास्त्र है, रजोगुणी शास्त्र है, तमोगुणी शास्त्र है। 18 पुराण तीन गुणों में बटे हुए हैं, 6 पुराण सत्वगुण के, 6 पुराण रजोगुण के और 6 पुराण तमोगुण के। तो सबसे पहली चीज भगवान कहते हैं कि शास्त्र में सत्वगुण बढ़ाओ, मतलब वो शास्त्र पढ़ो जहाँ जो तमोगुणी नहीं है, जो रजोगुणी नहीं है, जो सत्व गुण को प्रमुखता देते हैं। तो दूसरे शब्दों में जहाँ भगवान कृष्ण का गुणगान है हमें उन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जैसे भागवत कहा गया है तद्वाग विसर्गो जनताघमिलम् यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवध्यपद्यते नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। जो साधु लोग होते हैं वो किसको सुनते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति किसका गायन करते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति किसको ग्रहण करते हैं। तद्वाग् विसर्गो जनताघमिलम् यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवध्यपद्यते, जहां हर श्लोक में हर स्थान पर भगवान का गुणगान। तो पहली चीज भगवान कहते हैं ऐसे शास्त्रों को स्वीकार करो, तमोगुणी शास्त्र रजोगुणी शास्त्र स्वीकार करके कुछ नहीं होने वाला। तो कहां सत्व गुण बढ़ाना है, सबसे पहले शास्त्रों में जहां से हमें ज्ञान आता। दूसरा भगवान कहते हैं जल में। सो जल में सत्व गुण को बढ़ाने का क्या अर्थ है, हमेशा शुद्ध जल लेना चाहिए। आचार्य गुण समझाते हैं कि शुद्ध जल पीने के लिए और नहाने के लिए, शरीर को भी स्वच्छ करने के लिए शुद्ध जल होना चाहिए। जल में कोई भी प्रकार का दूषण हो तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर वो दूषण किसी भी प्रकार का हो तो जो भक्त होते हैं वो दूषित जल नहीं पीते। जैसे मान लीजिए कि लोग शराब पीते हैं, ये वो जल की तरह है, जल का रूप है, लेकिन वो दूषित, जल का रूपांतरण हो गया तो उसको ग्रहण नहीं किया जाए। या अगर जल का एक रूपांतरण ये भी है कि जल को परफ्यूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे करते हैं भगवान के लिए, ठीक है, भक्तों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, जब जल का रूप बदल जाए या जल में दूषण आ जाए तो जल को नहीं पीना चाहिए, शुद्ध जल केवल पीने के लिए और शरीर साफ करने के लिए हमें शुद्ध जल पीना चाहिए। तो ध्यान रखना चाहिए कि जल दूषित ना हो, क्योंकि दूषित जल होगा उससे आप स्नान करेंगे तो स्नान का कोई लाभ, उसको पिएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसीलिए शुद्ध जल वहां सत्व गुण को बढ़ाना है। अर्थात ये चीजें सत्व गुण को बढ़ा दे, पहली चीज शास्त्र, दूसरी बताते हैं जल, और फिर तीसरा भगवान कहते हैं संग, कैसे लोगों का संग करें। अगर हम ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जो भक्ति के विरुद्ध है, भगवान की भक्ति में रुचि नहीं लेते या बहुत ज्यादा भोगों में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का संग करेंगे तो फिर हम सद्गुरु को कभी ऊपर नहीं कर पाए। तो जब संग की बात आती है, लोगों की बात आती है, तो किन लोगों की बात हो रही है? उन सारे लोगों की जिनका हम संग कर रहे हैं, फिर उनको चाहे मित्र का नाम दिया जाए, उनको पत्नी का नाम दिया जाए, पति का नाम दिया जाए, बच्चे का नाम दिया जाए, माता पिता का नाम दिया जाए, ये सारे संग हैं। और अगर ऐसे संग हमें तमोगुण और रजोगुण की ओर ले जा रहे हैं तो हमें ऐसे संग को नहीं करना चाहिए। हमारा संग होना चाहिए जहाँ सत्व गुण को बढ़ा सके। दूसरे शब्द में अपने आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वे भक्ति मार्ग पर लगे, सत्व गुण को उत्पन्न करने या बढ़ाने में मदद करें। तो पहली चीज शास्त्र भगवान ने कही, दूसरी जल, और तीसरा संग, चौथी चीज वो कहते हैं स्थान। स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कहा जाता है कि शहर इत्यादि है ये रजोगुण में आते, वैश्यालय मदिरालय इसे तमोगुण के स्थान, तो हमें सत्वगुणी स्थान से बहुत आकृष्ट होना। सत्वगुणी स्थान साधारणता वन को माना जाता है, या उन स्थानों को जहां पर भक्ति का वातावरण, स्थान को भी बहुत महत्व है। क्या स्थान होना चाहिए, इससे व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। कि भगवान रामचंद्र वन में गए और निषाद राज के पास पहुंचे तो उसने कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 14 वर्ष आप मेरे राज्य में रहिए, यहाँ आराम से आप समय बिताइए, 14 साल ऐसे निकल जाएंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, मैंने वनवासियों का आहार, स्थान और वेश धारण किया, अर्थात मैं अब उस स्थान में नहीं जा सकता जो वन नहीं है, मैं वो वस्त्र नहीं पहन सकता जो वन में नहीं होते वेश, और मैं वो आहार नहीं कर सकता जो वन में नहीं। तो आहार, वेश और स्थान, ये हमारे मानसिक चिंतन या चेतना को प्रकट कर, इस तरह का बात सोच रहे हैं तो वैसा ही हमारा वेश होगा, वैसा ही हमारा स्थान होगा। यहाँ भगवान चौथा वर्णन कर रहे हैं कि स्थान, तो स्थान से सत्वगुण उत्पन्न कैसे करना है, वैसे स्थान में रहना है जहाँ भक्ति का वातावरण, ऐसे स्थान में रहना है जहाँ रजोगुण तमोगुण बहुत प्रभावी ना। श्रील प्रभुपाद गजेंद्र मोक्ष की कथा में एक बात लिखते हैं कि भक्त को अपने आप को कभी भी ऐसे स्थान में नहीं रखना चाहिए जहां माया प्रभावी। माया प्रभावी होने का अर्थ क्या है, रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाए, तो कभी भी ऐसे स्थान में नहीं रखना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए, जहां भक्ति बढ़ सके, जहां सत्व गुण, जैसे मंदिर, मंदिर शुद्ध सत्व में है या कम से कम सत्व गुण में है, तो वहां रहना चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं बहुत हाईवेज दिखाई देते हैं, होटल्स दिखाई देते हैं, ये सारे रजोगुण स्थानों की ओर आकर्षित नहीं। तो चौथी चीज भगवान कहते हैं स्थान, पांचवा वो कहते हैं समय। देखिए सत्वगुण को बढ़ाने के लिए हमें ये सब बड़ा ध्यान रखना है, शास्त्र कौन से पढ़ने हैं, जल कैसा पीना है, कैसे लोगों का संग करना है, कैसा स्थान होना है। और पांचवी चीज भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे हमारा समय, वो हम समय का उपयोग कर कैसे सत्व गुण को बढ़ा सकते। तो समय का कैसे होना चाहिए, प्रमुखता जैसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इसमें 4 बजे उठना समय का, हम समय को सत्व गुण में ला रहे हैं। और ऐसे सब समय से हमें बचना चाहिए, जैसे रात्रि का समय जहाँ रजोगुण तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ता है, जल्दी सो जाना चाहिए। भक्त जल्दी क्यों सोते हैं, इसका एक कारण ये है कि जितनी देर होती है रात में उतना ज्यादा तमोगुण रजोगुण बढ़ जाता है, और फिर हम अपने आप को सत्वगुण में नहीं रख पाते। जल्दी सो जाने से सत्वगुण को रहे, जल्दी उठना, 4 बजे उठ जाना या अधिकतम 4 बजे तक उठ जाना, और फिर भगवान की भक्ति। तो समय बहुत महत्वपूर्ण, तो ऐसे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब भी समय मिले भगवान के नाम का जप इत्यादि करना चाहिए, सत्व गुण में रखना है समय को। और फिर आगे भगवान कहते हैं समय के बाद, वो कहते हैं कि हमारे जितने कार्य हैं वो भी सत्वगुणी होने चाहिए। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए भक्त को इन सारी चीजों में कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं। कई बार लोग व्यापार करते हैं, बड़े रजोगुणी व्यापार होते हैं, तो फिर कैसे सत्वगुण बढ़ेगा। या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो तमोगुण से संबंधित है, तो कैसे रजोगुण बढ़ेगा। और हम भी भक्ति के मार्ग पर हैं तो हमारे कार्य कैसे हैं, कभी भी रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाले कार्य ना हो, उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए भक्त। मेरे कार्य कैसे हो रहे हैं, ये मेरे अंदर रजोगुण को बढ़ा रहे हैं या तमोगुण को बढ़ा रहे हैं। और अगर तमोगुण को बढ़ा रहे हैं, सब रजोगुण को बढ़ा रहे हैं, तो हमें बंद करने चाहिए, सत्वगुणी कार्य करने चाहिए, वो कार्य जो हमें सत्वगुण में रख सके। बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ भगवान गुणों की चर्चा प्रारंभ की है और इतना सुंदर ये वर्णन इन्होंने 10 चीजों में किया है, सबके लिए बहुत व्यवहारिक है। तो ऐसे कार्य नहीं करना, कौन से कार्य होते हैं रजोगुणी, ऐसे कार्य जिनसे हृदय में इस जगत में कुछ भोग करने की भावना बढ़ती है, रजोगुणी कार्य। तमोगुणी कार्य ऐसे कार्य जिनसे हमारे हृदय में एक आलस सा, या एक कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा निचले स्तर के कार्यों को करने की भावनाओं के उत्पन्न हो, वह तमोगुणी। मान लीजिए आपको रहने के साथ ऐसा लग रहा है कि मुझे स्त्री का संग करना चाहिए, तमोगुणी कार्य, रजोगुणी कार्य। आपको लग रहा है मुझे शराब पी लेनी चाहिए, आपको लग रहा है मुझे मांस खा लेना चाहिए, बस सारे कार्य। तो हमारे कार्य कहाँ हो सत्वगुणी, मतलब अधिकतर कार्य भगवान से संबंधित करना चाहिए। तो शास्त्र, जल, संग, स्थान, समय और कार्य। अब फिर अगला भगवान कहते जन्म, जन्म भी सत्वगुणी होना चाहिए। अब चलिए शास्त्र हमारे हाथ में है कि हम कौन सा पढ़ें, जल भी ठीक है शुद्ध ले ना ले हमारे हाथ, संग भी हमारे हाथ में, इसका संग करे ना करे, स्थान भी हम लोग कर सकते हैं, इधर रहे ना रहे वहां रहे, और साथ साथ समय को भी हम लोग उपयोग कर सकते। चलो कार्य भी हमारे हाथ में है कि हम सत्वगुणी करें, जन्म हमारे हाथ में है कि हमारा जन्म सत्वगुणी होगा या रजोगुणी होगा। तो फिर जन्म क्यों कहा भगवान, जन्म को भी सत्वगुण उत्पन्न करना चाहिए। यहाँ जो जन्म है ये अर्थ है, एक जन्म होता है माता पिता से और दूसरा होता है गुरु से। यहाँ जो वर्णन है ये द्विज दूसरे जन्म का वर्णन, दूसरे जन्म मतलब जहाँ हम गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करते हैं और उसको दूसरा जन्म कहा जाता है। So, इसका अर्थ क्या है, जय शिष्य। इसका अर्थ क्या है कि हमें किस प्रकार का जन्म, कैसे सत्वगुण उत्पन्न करना चाहिए जन्म में। इसका अर्थ है कि हमें गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करके हम अपने दूसरे जन्म को सत्वगुण में रख सकते, कब हम जन्म को भी सत्वगुण में रखें। और अंतिम दो पे कहते हैं सात अंतिम तीन, तो वो कहते हैं कि ध्यान, हमारा जो ध्यान का केंद्र हो वो भी सत्वगुणी होना चाहिए, अर्थात हम सदैव भगवान का ध्यान करें, भगवान के चिंतन में रहें। हम रजोगुण बढ़ाने के लिए कोई स्त्री संग का ध्यान ना करें, तमोगुण बढ़ाने के लिए कोई निचले कार्यों का ध्यान ना करें। तो इसीलिए हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, कितना जिस चीज का हम ध्यान करते हैं उसी तरह का गुण बढ़ जाता है। आप बारंबार स्त्री संग का ध्यान करते रहिए रजोगुण बहुत बढ़ जाए। वही आप ध्यान कृष्ण का करते रहिए, जब अवसर मिले तो स्वाभाविक है सत्वगुण बढ़ेगा, और सत्वगुण ही क्यों शुद्ध सत्व बढ़ जाए, दिव्य स्तर पर आ सकते हैं भगवान का स्मरण करें। तो इसलिए हमारा ध्यान भी होना चाहिए। और नौवा हम बताते हैं मंत्र, तो हमारा मंत्र कौन सा होना चाहिए, वो जो हमें सत्वगुण में और शुद्ध सत्व में ले जाए, तमोगुणी मंत्र नहीं कि मंत्र जब करने से और हम नीचे इस जगत में फंस रहे हैं। और आखिरी वो कहते हैं दसवां संस्कार, हमारे संस्कार ये ऐसे कार्य ऐसे संस्कार होने चाहिए जो हमें रजोगुण और तमोगुण से बचाए। संस्कार वैसे संस्कृति के संस्कार होते ही है हमें अच्छे स्तर पर रखने के लिए। तो भगवान ये चीजों को कहते हैं कि हमें कैसे 10 चीजों में, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण चीजें भगवान ने बताई हमें याद रखनी चाहिए। शास्त्र कौन से पढ़ने हैं, भगवान का गुणगान, जल शुद्ध लेना, संग ऐसे लोगों का जो भगवान के साथ भगवान की ओर जा रहा है, स्थान वो स्थान जहाँ भगवान का स्मरण हो सके उस स्थान को लेना चाहिए, समय ब्रह्म मुहूर्त का समय या हर समय भगवान का स्मरण करते हुए उस समय को शुद्ध करना चाहिए, कार्य ऐसे कार्य हो जो हमें भगवान की ओर ले जाए, जन्म हमारा जन्म द्विज होना चाहिए अर्थात गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, और फिर ध्यान हमारा कोई भी भौतिक कार्यों का ध्यान ना हो, मंत्र भी ऐसा हो जो हमें भगवान की ओर ले जाए, और अंततः संस्कार, ये 10 चीजें भगवान कहते हैं इससे सत्वगुण उत्पन्न करना चाहिए। और वे एक उदाहरण देते हैं, वे कहते हैं कि जैसे जंगल में आग लगती है तो कैसे लगती है, जो बांबू के वृक्ष होते हैं तो उनमें घर्षण होता है और उन घर्षण से अग्नि प्रकट होती है, लेकिन वो अग्नि उन बांबू को भी जला देती है, जिससे अग्नि आई है उसी को जला देती है। हम लोग माचिस की तीली जलाते हैं ना, तो माचिस की तीली से अग्नि आती है लेकिन क्या होता है उस तीली को भी जलाकर खत्म करती है। तो ऐसे जंगल में आग लगती है बांबू के वृक्ष से, लेकिन उन वृक्षों को भी जला देती है। तो भगवान ये उदाहरण ये देने के लिए कहते हैं कि जो हमारा भौतिक शरीर है इससे हम सत्व गुण को उत्पन्न करें, इसका उपयोग करके, और फिर क्या होगा उस सत्व गुण से जब शुद्ध सत्व निकलेगा या दिव्य स्तर पर जाएंगे तो अपने आप ये जो शरीर जिससे सत्व गुण आ रहा है वही सत्व गुण इस शरीर को समाप्त कर देगा, अर्थात भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर देगा। तो ये उदाहरण भगवान देते हैं, जब भगवान ने ऐसे कहा कि अपने शरीर को ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, तो उद्धव के मन में एक प्रश्न आया कि लोग ऐसे घृणित कार्य करते ही क्यों हैं? उनके मन में आ गया कि तो भोग क्यों करना चाहते हैं इस जगत में, जबकि जानते हैं कि जब भोग करेंगे तो फिर कष्ट आएगा, दुख आएगा। जैसे भगवान ने भगवद गीता में भी कहा, यही संस्पर्श जाप होगा दुख ही होने की। तो जब लोग जानते हैं कि दुख आने वाला है तो भोगों में क्यों पड़ते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था उद्धव का कि ऐसा क्यों होता है, वो लोग क्यों भोग में पड़ते हैं। और तो उद्धव ने ये प्रश्न किया तो उस समय भगवान उत्तर देते हैं कि उद्धव ने प्रश्न करते हुए ये भी पूछ लिया था कि ये लोग जो भोग करते हैं दुख देखते नहीं है, ये कुत्ते गधे और बकरी की तरह, कुत्ते गधे और बकरी की तरह। क्यों? इस जगत में जब व्यक्ति भोग करना चाहता है तो भोग करने के माध्यम क्या है, मैं लेना, धन कमाना, झूठी प्रतिष्ठा के पीछे भाग, बस यही है तीन। और जब कुत्ते को देखा जाता है, कुत्ते का उदाहरण कि वो जाता है मैथुन सुख लेने के लिए और उसको ऐसे भगा दिया जाता है, फिर भी वो पीछे पीछे भागता है। या गधा है, वो जब मैथुन सुख लेने जाता है तो उसको लात पड़ती, फिर भी जाता है। बकरी है, मर रहे हैं, कटने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खाना और मैथुन सुख करना वो करता रहता है, ये नहीं देखता कि मर रहा है। तो मनुष्यों को तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उद्धव का ये प्रश्न था कि कैसे ये ऐसे निम्न पशु की तरह कार्य करते, क्यों नहीं समझते हैं कि दुख आने वाला। तो भगवान कहते हैं, भगवान उत्तर देते हैं कि दरअसल इस सबका प्रारंभ होता है झूठी पहचान से, क्योंकि व्यक्ति अपनी झूठी पहचान बनाए रखता है और उस कारण से उसके अंदर रजोगुण बढ़ जाता है। और रजोगुण बढ़ने से क्या होता है, जो भौतिक प्रगति के प्रति वो पीछे भागता है, और जितना भौतिक प्रगति के पीछे भागता उतना ज्यादा भौतिक इच्छाएं बढ़ती। सो अपनी पहचान को भूल गया, इसीलिए रजोगुण को बढ़ा दिया, रजोगुण को बढ़ाया तो भौतिक प्रगति के पीछे भागा, भौतिक प्रगति के पीछे भागा भौतिक इच्छाएं बनी, और भौतिक इच्छाएं हुई उसके कारण से सारा कष्ट, तो वो इसी में पड़ा रहता है। तो वो कहते हैं इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है कि मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। तो कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि जब हम कार्य कर रहे हैं कि जो ये जो रजोगुण तमोगुण हमें कितना कष्ट दे रहे हैं, इसको देखकर हमें अलग होना चाहिए। दो चीजें कर सकते हैं हम, मन को अपने जो भी कार्य हैं जो हमें कष्ट दे रहे हैं, रजोगुणी तमोगुणी कार्य, उनसे निकाले और कृष्ण में लगाए। दो चीजें करने से मन नियंत्रण में, दोनों करना, केवल मन को हटा लेने से कुछ नहीं होगा, फिर मन भागेगा। तो मन को हटा लीजिए, ऐसे जैसे भगवान उदाहरण देते हैं भगवद गीता में कछुए का, कि कछुआ जब अपने अंगों को वो ऐसे बाहर लेता है और जब खतरा होता है तो अंगों को अंदर कर ले, तो जब आवश्यकता है बाहर, जब नहीं है तो अंदर। तो इसी तरह एक भक्त को होना चाहिए, जब इंद्रिय तृप्ति का वातावरण आए तो उसको अपनी इंद्रियों को बंद खींच लेना चाहिए, और जब भगवान की सेवा की बात हो तो इंद्रियों को पूर्ण रूप से लगाना चाहिए। दोनों चीजें करनी, आप एक तरफ हटाइए इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से और दूसरी ओर इंद्रिय को लगाइए भगवान की सेवा, मन को लगाइए भगवान की सेवा। तो भगवान ने कहते हुए कहा यही ज्ञान चार कुमारों को दिया गया था और यही सार था उसका, चीजों को हटाना है और मन कृष्ण में लगाना है। तो उद्धव ने तुरंत प्रश्न किया कि कब आपने दिया था ज्ञान, कब ये ज्ञान चार कुमारों को दिया गया, आपने आपने अभी भी कहा कि चार कुमारों को कब दिया उनको, कैसे दिया, किस रूप में दिया आपने, क्या मुझे तो आप साक्षात दे रहे हैं तो उनको किस रूप में दिया। तो भगवान उनको फिर बताते हैं, वो कहते हैं कि एक समय चार कुमारों में ब्रह्मा जी से प्रश्न, क्या प्रश्न था उनका, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि देखिए मन में बहुत सारी इच्छाएं आती रहती, बहुत मन जो है वो इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित रहता है, और इंद्रिय भोग की भावना इन भौतिक इच्छाओं के द्वारा मन में आती रहती, मतलब ये दोनों तरफ से चल रहा है, मन भाग रहा है भौतिक इच्छाओं के लिए, भौतिक भोग के लिए, और भौतिक भोग की भावना फिर से मन में घुस रही। बोले ये सब खत्म कैसे होगा, ये तो चलता ही रहेगा, मन आकृष्ट होगा भोग की तरफ और फिर इच्छाएं बढ़ जाएंगी, फिर से भोग, फिर इच्छा, फिर भोग, तो कैसे खत्म होगा। तो जब ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रश्न किया, ब्रह्मा जी थोड़े भ्रमित हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। देखिए जब भगवान ने सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने की भगवान से शक्ति मांगी, तो भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा था कि तुम सृष्टि करोगे भ्रमित नहीं हो, या फिर ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि क्योंकि मैंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया, मैं कभी भ्रम में नहीं आ सकता, मैं कभी भ्रमित नहीं हूं। यहां देखते ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, तो ऐसे कैसे भगवान ने कहा नहीं होगे, फिर भी हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं हो नहीं सकता क्योंकि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए, तो कैसे हो गए। तो यहाँ दरअसल जैसे ब्रह्मा विमोहन लीला यहाँ पर है, ये बताने के लिए है कि अगर आप बहुत अच्छी तरह से भगवान की सेवा में भी लगे हैं तो भी खतरा बना रहेगा। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार आ गया तो फिर हम भ्रम में पड़ जाए। तो ये बतलाने के लिए ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जो सतत भगवान की सेवा में लगे हैं, इतने ऊंचे पद पर हैं, वो भी भ्रम में आ सकते हैं। इसलिए इस जगत में खतरा है, पदम पदम दुर्गदाम। तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और ब्रह्मा जी ने शुरू किया, इसका उत्तर क्या होगा, कैसे लाऊं इसका उत्तर, कहाँ से आएगा। तो फिर उस समय भगवान प्रकट हुए और वो आए हंस अवतार, एक हंस का उन्होंने स्वरूप लिया और भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा के सामने। हंस अवतार ही क्यों लिया, उन्होंने हंस रूप में क्यों आए, क्योंकि जो हंस होते हैं ये किस लिए जाने जाते हैं, हंस जाने जाते हैं दूध और पानी को अलग करने। ये हंस के अंदर एक भगवान ने बड़ा अच्छा गुण दिया हुआ है कि हंस दूध और पानी को अलग करता, कैसे करता है, उसकी जिह्वा पर भगवान ने एक केमिकल दे दिया है, नेचुरल एक रसायन है, जैसे ही वो स्पर्श करता है दूध को तो दूध फट जाता है, तो दूध का जो पानी है वो अलग हो जाता है, जो पनीर पनीर है वो रह जाता है। जैसे हम लोग भी दूध को फाड़ना हो तो कुछ डालते हैं रसायन और उससे दूध फटता है, पानी अलग हो जाता है, पनीर अलग होता है। तो हंस में ये स्वाभाविक गुण दिया गया, अर्थात वो भेद कर सकता। तो जब हंस अवतार भगवान आए तो हंस रूप क्यों लिया, ताकि भगवान अब भेद करने वाले हैं किसमें, आत्मा के गुणों में और शरीर के गुणों में। भगवान भेद करेंगे स्पष्ट, भौतिक गुण और आध्यात्मिक चेतना, इसको स्पष्ट अलग करना है। इसलिए हंस रूप में आए हंस अवतार। तो हंस रूप में आए, ब्रह्मा जी ने पूजा की भगवान की, चार कुमारों ने देखा, अपने चार कुमारों ने भगवान से प्रश्न किया आप कौन हैं। वैसे तो ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए था, जब देख रहे होगी तुम्हारे पिता पूजा कर रहे हैं उनकी तो फिर प्रश्न क्यों कर रहे होगी कौन है। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रश्न किया आप कौन हैं। भगवान ने उसके उत्तर में उनको ये कहा, ज्ञान देना प्रारंभ। तो भगवान ने पहले कहा कि अगर तुम मुझे आत्मा मानकर ही प्रश्न कर रहे हो कि कौन है, और ये सोचते हो कि सभी आत्मा एक ही है, तो फिर ये प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का सवाल ही पैदा नहीं, क्यों प्रश्न कर रहे हो। क्योंकि जब तुम ये मानते हो कि सारी आत्मा एक ही है और मुझे भी आत्मा मानकर कर रहे हो, तो मुझ में और आप में अंतर ही नहीं है, तो एक ही है, तो ये प्रश्न का करने का अर्थ ही नहीं। दूसरे शब्दों में भगवान दरअसल ऐसा दर्शन जिसमें ये कहा जाता है कि जीव और भगवान एक है, इसका खंडन कर रहा है। ये मत मानो एक है, तो प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही। प्रभुपाद भी इसको लिखते हैं भगवद गीता में, जहां अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न किससे किया जाएगा, कोई व्यक्ति अलग होगा तभी तो प्रश्न होगा, अगर हम ही हैं वो तो कोई प्रश्न कहाँ हो। दूसरी चीज भगवान ने कहा, अगर तुम मुझे शरीर मानते हो तो तुम्हें ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए आप कौन है, तुम्हें प्रश्न करना चाहिए कि आप पांच क्या है, पांच चीजों से बनता है शरीर, तो आप पांच क्या है। तो इस तरह से भगवान ने पहले ही खंडन किया कि जो प्रश्न कर रहे हो गलत। और फिर भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। हंस अवतार की जो शिक्षाएं हैं उनमें प्रमुख सार के रूप में शिक्षाएं ये है कि भगवान कहते हैं जो भी तुम्हें इस भौतिक जगत में दिखाई देता वो मैं, जो भी आप देख सकते, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति से बना और शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, इसलिए जो कुछ भी है भगवान कह रहे हैं इस जगत देख रहे हो और वो मैं हूं। इस जगत के सही स्वभाव को समझो, और सही स्वभाव को समझकर इस जगत को त्याग कर। जब तक हम सही स्वभाव को नहीं समझ सकते इस जगत के, हम त्याग नहीं कर सकते। जब तक नहीं जानेंगे कि यहाँ बड़ा कष्ट है, बाधाएं हैं, ये शाश्वत नहीं है, हम इसको त्याग दें। तो भगवान कहते हैं उसको समझ कर और उसको त्यागो। तीन अवस्थाओं का वह वर्णन करते हैं। एक सुप्त अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था होती है और एक स्वप्न अवस्था होती है। भगवान कहते हैं इसके परे एक अवस्था है जिसमें मेरी चेतना है, तुरिया। तो तीन अवस्थाओं का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि तीनों अवस्थाओं से आगे जाए। मिथ्या अहंकार को त्यागे। कैसे मिथ्या अहंकार को त्याग सकते हैं? जानकर कि मिथ्या अहंकार केवल कष्ट ही देता है। भगवान कहते हैं जब तक किसी का मन मुझ में नहीं लगा पूर्ण रूप से, वो जो भी कर रहा है केवल स्वप्न, स्वप्न अवस्था। जब मेरे से संपर्क में आता है तब सत्य की ओर बढ़ता है। तो वो कहते हैं कि हमें अपने इंद्रियों का स्वामी बनना चाहिए, दास नहीं। तो कैसे बन सकते हैं? ये जानकर कि मैं हर अवस्था में मैं ही हूं, चाहे दुख में हूं, सुख में हूं, किसी अवस्था में हूं, चाहे स्वप्न अवस्था मैं हूं, अर्थात मैं उससे परे हूं अवस्था। तो इसको जानकर हम इनसे बाहर आ सकते हैं और ज्ञान के द्वारा हम अहंकार को समाप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तीन चीजों को हमेशा याद रखो। पहला जो कुछ है अविद्या के द्वारा बनाया गया। दूसरा हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम इस शरीर के परे हैं। और तीसरा हमें इस ज्ञान के आधार पर अपने कार्य करने चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि इस जगत में जब तक रहोगे तब तक कष्ट में रहोगे। और मेरी तुमने बात की तो मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ। वो कहते हैं भगवान कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं विष्णु हूं जिन्होंने अवतार लिया है इस जगत में और केवल ज्ञान देने के लिए। भगवान कह रहे हैं ये बताने के लिए कि मैं ही परम आश्रय हूं। जब तक हम ये नहीं समझते हैं कि हमें किसकी शरण जाना है, तब तक हम बहुत सारी चीजों की शरण लेते हैं। हम पैसे की शरण लेते हैं, हम किसी शक्तिशाली व्यक्ति की शरण लेते हैं, हम कोई स्थान की शरण लेने का प्रयास करते हैं। इस स्थान से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, इस व्यक्ति से मिल जाएगा, धन आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। तो हम शरण किसकी ले रहे हैं? हम शरण भगवान की नहीं ले रहे हैं, हम शरण ले रहे हैं पैसे की, स्थिति की, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की। तो भगवान कह रहे हैं कि शरण लेनी है तो मेरी लेनी चाहिए, क्योंकि तो मैं ये सब प्रदान कर सकता और तुम्हारी रक्षा केवल मैं ही कर सकता। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं जितने भी अन्य चीजों में आप शरण लोगे वो सब तो वैसे भी मेरी शरण में। शरण वो दे सकता है जो किसी दूसरे की शरण में नहीं। जब कोई दूसरा ही, हम लोग खुद ही दूसरे की शरण में है तो हम किसी को क्या आश्रय देंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा आश्रय इसलिए लेना चाहिए क्योंकि तो बाकी सब मेरी शरण में है, मेरे आश्रय। तो इसको कहकर भगवान फिर अपनी शिक्षाओं को समाप्त करते हैं। और फिर श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव ये ज्ञान देने के बाद फिर मैं वहां से अपने धाम वापस चला गया और ब्रह्मा जी के पुत्रों को ये ज्ञान दिया। ये इस अध्याय में हंस अवतार की शिक्षाओं के द्वारा ये ज्ञान दिया गया कि हमें कैसे सार के रूप में इस अध्याय में कि कैसे हम इन तीन गुणों में फंसे हुए हैं। कभी मन करता है ये तीन गुण कैसे प्रकट होते हैं, कभी मन करता है बस मंदिर रात जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, फिर अचानक मन में थोड़े समय बाद आता है ये भी कर लेना चाहिए, बहुत पैसा कमाना है, बहुत धन कमाना है, बड़ा प्रसिद्ध होना है, उसके लिए जो भी गलत करना पड़े कर लो, ये भी मन में आ जाता है। फिर बाद में मन में और भी आ जाता है, रात्रि का समय होता है तो तमोगुण प्रभाव कर देता है। तो देखिए अलग अलग एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें मन में आती रहती, तो अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो अर्जुन उद्धव को भगवान वही बता रहे हैं कि ये सारे इस अध्याय में कि सारे जो प्रभाव हैं ये व्यक्ति को होने नहीं चाहिए लेकिन हो रहे हैं क्योंकि हम गुणों के प्रभाव। और जब गुणों के प्रभाव से परे जाएंगे तब हम इन शांत मन से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा पूछना चाहता है? हाँ जी, क्या प्रश्न है?
जितना मुझे ज्ञान था मैंने तो बताया था, बाकी आप
जी माता जी का यहाँ प्रश्न है कि कृष्ण की 16,108 रानियां क्यों थी? एक ही रखते भगवान राम ने तो केवल एक रखी, दूसरा विवाह नहीं किया। हालांकि वो वन में भी चली गई थी, तब भी भगवान ने नहीं किया। और रामचंद्र जी को कहा भी गया यज्ञ के समय कि आपको दूसरा विवाह कर लीजिए, उन्होंने कभी। तो फिर सीता देवी के सोने की मूर्ति बनाई गई, उसको रखकर यज्ञ के भगवान ने विवाह नहीं किया। माता जी का प्रश्न है कि कैसे 16,000 में कर दिया। पहली चीज है कि 16,108 हुए श्री कृष्ण के उस समय था जब क्षत्रिय जो राजा हुआ करते थे वे अधिक विवाह करते थे स्त्रियों के रक्षण। स्त्रियों की संख्या ज्यादा होने से अगर उनकी विवाह ना हो तो रक्षण नहीं होता। और श्री कृष्ण ने भी जो विवाह किए 16,108 विवाह में से इस सारे विवाह उन स्त्रियों की इच्छा से। पहला विवाह उन्होंने रुक्मिणी से किया, तो रुक्मिणी से जो विवाह किए तो रुक्मिणी की इच्छा थी। रुक्मिणी ने पत्र लिखा था कि आप नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण दे दूं। भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया। फिर सत्यभामा उनको दिए गए, कालिंदी, जांबवती, कालिंदी इत्यादि सबकी इच्छा। पहली चीज ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए, भगवान ने अपने आनंद के लिए कोई विवाह नहीं किया। रुक्मिणी से भी विवाह उन्होंने उनकी इच्छा से। फिर 8 विवाह हो गए थे, 16,100 विवाह उन्होंने एक साथ किए। तो क्यों किए? श्री कृष्ण गए कि 16,100 राजकुमारियों को एक असुर ने बंदी बनाया हुआ था, नरकासुर, उसने बंदी बनाकर रखा था काफी समय से। भगवान गए, भगवान ने उस असुर को मारा, उनको छुड़ाया और उनको कहा कि आप अपने अपने राज्य में जाइए, हम सेना भेजते हैं साथ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी रक्षा का हम वचन देते हैं, हमारी सेना जाएगी आपको अपने घर पहुंचा कर आएगी। भगवान ने सबको यही कहा 16,100, ठीक है अब आप अपने अपने घर जाइए। तो जो 16,100 राजकुमारियां थी उन्होंने कहा भगवान से कि हम इतने समय यहाँ बंदी थी इस राक्षस के पास, अब अगर हम वापस जाएंगे हमसे विवाह कौन करेगा? स्वाभाविक है ना, तो पता चले कि ये कोई कहे अच्छा आपको अपनी ये पत्नी है इससे विवाह करना, अच्छा वेरी गुड विवाह के लिए तैयार है। ये कहाँ थे पिछले एक साल? पिछले एक साल किसी राक्षस के साथ रह रहे थे, अब आए तो आप विवाह करेंगे? तो उन्होंने कहा हमसे कौन विवाह करेगा, तो हम भी दुखी रहेंगे, हमारे माता पिता भी हमेशा दुखी रहेंगे, विवाह नहीं होगा। तो कृष्ण ने कहा बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा आप भी विवाह कर लो। अब कृष्ण ने कहा गलती हो गई, छुड़वा दिया है। तो खैर उन्होंने कहा आपने तो उनके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए, इसलिए नहीं कि कृष्ण बहुत भोग करना चाहते थे, उन्होंने मान सम्मान की, इनको अगर विवाह नहीं किया तो सही में जीवन भर ये भी रोते रहेंगे और उनके माता पिता भी दुखी रहेंगे। कृष्ण ने उनके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए 16,100, लेकिन उन 16,100 विवाह को करते हुए भगवान ने दिखलाया भगवान क्या होते हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन पर हम इस तरह के बातें करें। क्यों? क्योंकि 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुए। ऐसा नहीं था कि भगवान एक के बाद एक विवाह कर रहे थे, मंडप लगे हुए इधर से उधर भाग रहे थे, चलो ये विवाह पूरा हुआ, नेक्स्ट ये विवाह पूरा हुआ। भगवान दिखला रहे थे कि क्या होते हैं भगवान। 16,100 रानियां थी जो राजकुमारियां थी, उनके माता पिता थे, सबके अलग अलग थे, लेकिन कृष्ण तो एक थे, विवाह कैसे करते? और कोई सामूहिक विवाह नहीं हुआ था, ये मत सोचिए कि कृष्ण बैठे 16,000 एक सौ चलो मैं सबको विवाह कर, हर एक के साथ पूरी वैदिक पद्धति से विवाह हुआ। तो कैसे हुआ, भगवान ने अपने आप को 16,100 रूपों में स्थापित कर दिया, और 16,100 रूपों में अपने आप को नहीं अपने माता पिता को भी कर दिया, क्योंकि हर जगह माता पिता भी तो चाहिए हर विवाह में। तो ये कृष्ण, तो अगर कोई ऐसा कर सकता है तो 16,100 विवाह कर, लेकिन अगर अपने आप को 16,100 भागों में विभाजित नहीं कर सकता उसके लिए एक विभाग। तो भगवान जो करते हैं उसका हमें नकल नहीं करनी, लेकिन जो शिक्षाएं भगवान ने दी हैं उसको हमें जीवन में उतार, वो हमारे लिए, क्योंकि हम भगवान नहीं। हम में से कोई कह सकता है कि कृष्ण ने 16,108 के मैं 3-4 तो कर लू, नहीं आप भगवान नहीं है, यही बताने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की है। आप भगवान नहीं है तो आपके लिए आदेश क्या है शास्त्र में, एक ये शास्त्र कहता है। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य गण होते हैं उन्होंने एक ही विभाग, जिन्होंने भी विभाग किए, तो हम नहीं देखते हैं कि हमारे आचार्यों में से अन्यों में बहुत सारे विभाग, भगवान ने किए दिखलाने के लिए कि वो भगवान है और उनके रक्षण के। और उस समय वैसे भी जो राजा हुआ करते थे तो एक से अधिक विवाह करते थे, केवल स्त्रियों के रक्षण के, उनको वही सम्मान दिया जाता था, वही ऐश्वर्य सारा। जैसे दशरथ महाराज के साथ भी हुई, कितनी पत्नियां थी उनकी, 3-4, 353 पत्नियां थी, 3 प्रमुख थी पटरानी और वैसे 350 अलग। सो वही वो समय था, लेकिन ये कलयुग है, अभी हम लोग उसमें नहीं है, तो इसके लिए कलयुग में रामचंद्र जी का पालन कर एक पद इस संबंध संदर्भ में। तो दूसरा कारण ये भी है कि कृष्ण जब आए इस जगत में, भगवान राम आए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए, तो उन्होंने सारी चीजों में मर्यादा स्थापित, एक पति की मर्यादा, एक पत्नी की मर्यादा, एक पुत्र की मर्यादा, एक पिता की मर्यादा, उन्होंने राजा की मर्यादा स्थापित। जब कृष्ण आए हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लीला पुरुषोत्तम, वो लीलाओं को प्रकट करने आए कि देखो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है और हमें आकर्षित कर। तो इस दृष्टि से उन्होंने 16,108। वैसे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान सबके पति, तो 16,108 नहीं, ये तो जितने जीव है उन सबके पति हैं। इस जगत में जो पत्नियां हैं उनके भी पति हैं और जो पत्नियों के पति हैं उनके भी पति भगवान, भगवान सबके पति। इस दृष्टि से कहना चाहिए कि बहुत सारे जीवों के वो पति। ठीक है, ओके, यहाँ कुछ प्रश्न। महादेव प्रभु का प्रश्न।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि हम सब भौतिक जगत में हैं ऑलरेडी, तो हम इन प्रभावों से बच सकते हैं कि भक्तों का संग मिले, ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है जिसे भक्तों का संग नहीं मिल रहा या वो ले नहीं पा रहा, रीजन जो भी हो, तो उसका कैसे उद्धार होगा?
जिस व्यक्ति को प्रत्यक्ष भक्तों का संग ना मिल रहा हो उसको कैसे उद्धार होगा, क्योंकि उसकी इच्छा है लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा है किसी कारण से। पहली चीज है कि भक्तों का संग कई प्रकार से होता है। एक होता है वपु, साथ में रहना, दूसरा होता है वाणी। सो अगर किसी भक्त को वपु का संग नहीं मिल रहा तो वाणी के संग को बढ़ा देना चाहिए, वो भी एक संग है। जैसे हम लोगों को आज श्रील प्रभुपाद को वपु का संग नहीं है लेकिन वाणी है, तो हम वाणी के द्वारा प्रभुपाद का संग कर। तो अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष ना कर पाए तो उसे वाणी का करना चाहिए। दूसरी चीज, जहां जितना अवसर मिले उसको करने का प्रयास करना चाहिए। सुमन महतो जी का प्रश्न।
हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु जी मेरा भी ऐसे संघ से है प्रश्न कि जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास के लोग तमो और रजोगुण में लिप्त हैं, तो और हम भक्ति में कैसे अपने आप को दृढ़ कर सकते हैं उनके विरुद्ध, उनका संघ परिवार के।
सॉरी, हमें मानना चाहिए कि भले बाहर का वातावरण बड़ा दूषित है, लेकिन हमें रोज वैक्सीन लगानी। हम लोग रोज भगवान के नाम का जप करते हैं, 16 माला जप, ये वैक्सीन की तरह है। सो भले बाहर का आपके आसपास का वातावरण रजोगुण तमोगुण का है, लेकिन अच्छे से रोज वैक्सीन लगा लेंगे कुछ नहीं होगा। ये विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप रोज करना चाहिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण।
हरे हाँ प्रभु जी, आपने एक एग्जाम्पल दिया कि घर्षण, जंगल में जो आग लगती है वो घर्षण से लगती है, और वही आग वो घर्षण जिसके कारण लगी है वो उसको खत्म कर देती है। तो इसका फिर जो अपने शरीर के साथ दिया ना, वो जरा थोड़ा और क्लियर कीजिए ना।
हाँ, हमने बताया कि जैसे जो बांबू होते हैं उनसे ही अग्नि प्रकट होती है, और वो अग्नि बांबू को भी जला देती है, जिससे आई है उसी को जला देती है। इसी तरह हम लोग जब इस शरीर का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ज्ञान लेने के लिए, जब शरीर से हम ज्ञान लेते हैं तो वो जो ज्ञान की अग्नि है वो शरीर को जला सकती है। शरीर को मतलब भौतिक शरीर, और भौतिक शरीर में हमारा स्थूल और सूक्ष्म, तो इन दोनों को समाप्त कर सके। दूसरे शब्दों में हमारा भौतिक अस्तित्व ये केवल स्थूल और सूक्ष्म शरीर में है, तो दोनों चले जाएंगे तो फिर जीव मुक्त हो जाता है। तो जब हम इस शरीर का उपयोग करते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो वही सेवा वही ज्ञान हमारे भौतिक अस्तित्व को समाप्त, जिसका इस्तेमाल करके, जिस शरीर का इस्तेमाल करके हम ज्ञान ले रहे हैं वही शरीर का नाश होगा, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। तो ये यहाँ पर उदाहरण का है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वैष्णव वृंद की जय।